दिन भर गुरुवार 12 नवंबर मैं हूं निखिल रंजन। भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे लंदन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर सैनिक लश्कर के साथ डेविड कैमरन ने किया इस्तकबाल। पूरे ब्रिटेन में नरेंद्र मोदी के स्वागत की गूंज, लेकिन साथ ही उठ रही विरोध की भी आवाजें। पाकिस्तान में दिवाली पर हिंदुओं को मिली प्रधानमंत्री की बधाई, क्यों बदल गया नवाज शरीफ का मिजाज?
आप मुझे दिवाली के फंक्शन में बुलाएं, दिवाली की खुशियों में शरीक होने का मौका दें, आइंदा मुझे ऐसी जगह पे भी बुलाएं जहां दिवाली आप मनाते हैं।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर लंदन पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के बीच मुलाकात जारी है। इस दौरे में ब्रिटेन और भारत के बीच अरबों पाउंड के व्यापारिक समझौते होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी मुलाकात करेंगे और ब्रिटेन की संसद को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले एक तरफ मोदी के स्वागत में किंग चार्ल्स स्ट्रीट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं उनका लंदन में अलग अलग गुट विरोध भी कर रहे हैं। भारत में कथित असहनशीलता के विरोध में हो रहे एक प्रदर्शन में शामिल एक मानवाधिकार वकील और कार्यकर्ता सुरेश ग्रोवर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया।
We've been lectured by Mr. Cameron about British values of tolerance, of equality, of justice.
भारत कैमरन हमें सहनशीलता, बराबरी और न्याय पर भाषण देते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे की मेहमानबाजी कर रहे हैं जो इन मूल्यों को नहीं मानते। ब्रिटिश सरकार दोहरे मानदंड अपना रही है। पहले उन्हें 10 साल के लिए बैन कर दिया गया और अब व्यापार के लिए अपने मूल्यों को ही दरकिनार कर दिया गया है। ये थे सुरेश ग्रोवर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कुर्द लड़ाकों ने उत्तरी इराक के सिंजर शहर में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में भारी सफलता मिलने का दावा किया है। कुर्दों के दावा है कि उन्होंने सिंजर के पास सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक हाईवे पर कब्जा कर लिया है। ये हाईवे सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के गढ़ों को आपस में जोड़ता है। कुर्द लड़ाकों के अभियान को गठबंधन सेनाओं के हवाई हमलों का समर्थन मिल रहा है। सिंजर पर पिछले साल कब्जा करने वाले इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि कुर्दों को रोकने में उनके के कामयाब रहे हैं। इटली की पुलिस ने यूरोप में इराक और सीरिया चरमपंथी भेजने वाले एक नेटवर्क पर कार्रवाई के सिलसिले में कई छापे मारे हैं। 6 इराकी कुर्द और 1 कोसावान शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां इटली, ब्रिटेन और नॉर्वे में की गई हैं। इटली के सरकारी वकील फ्रांको रोबर्टी ने बताया। मुख्य संदिग्ध संगठन का नेता है, उसे मुल्ला क्रेकर के नाम से जाना जाता है। ये अंसार अल इस्लाम गुट का पूर्व संस्थापक सदस्य था और अब इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक नए गुट का संस्थापक है। ये गुट इराकी कुर्दिस्तान में इस्लामिक स्टेट के हिंसक तरीकों का समर्थन करता है। ये हमलों की योजना भी बनाता है। हालांकि इटली में हमले की कोई योजना नहीं थी। इस गुट के सदस्य इटली में भी हैं और इन्हें आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये थे फ्रांको रॉबर्टी के शब्द। अमेरिकी नेता नैन्सी पॉलोसी के नेतृत्व में एक डेमोक्रेट कांग्रेस सदस्यों का दल तिब्बत की यात्रा पर गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं और पूरा इंग्लैंड मानो उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने उनकी आगवानी की। अब से बस कुछ ही देर पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर सैनिक गाजेबाजे और लाल कालीन के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। और वहाँ पर इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर ब्रजेश उपाध्याय हमारे बीबीसी संवाददाता भी मौजूद हैं। ब्रजेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि आप वहाँ का जो इस वक्त नज़ारा है उसे थोड़े शब्दों में बयान करें। लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नितिन श्रीवास्तव बीजेपी बीबीसी संवाददाता भी वहां मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नितिन, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूं निखिल।
जी नितिन, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर हैं और वहां पर अभी अभी स्वागत समारोह जो है वो पूरा हुआ है, क्या कुछ आप वहां के बारे में हमें बता सकते हैं, किस तरह का नज़ारा था उस वक्त?
देखिए जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से खासी तैयारियां रही हैं नरेंद्र मोदी के लंदन आने को लेकर, और सुबह से पूरे लंदन में, सेंट्रल लंदन में समझिए तमाम जो बड़ी सड़कें थी उनको बंद कर दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। 8:30-9 बजे से पूरा जो पार्लियामेंट का वेस्टमिंस्टर का इलाका है यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं, सुरक्षा का इंतजाम है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पिछले 2 से 3 घंटे से सैकड़ों की तादाद में प्रोटेस्टर्स, विरोध करने वाले लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें नेपाली समुदाय के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से चाह रहे हैं कि वो जो ब्लॉकेट हुआ है भारत नेपाल के लोग उसको खत्म करें। उसके अलावा यहाँ पर सिख समुदाय के लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं किया जाएगा कैबिनेट द्वारा इस तरह से। तो काफ़ी गहमा गहमी बनी हुई है। मैं इस डाउन से ठीक थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करनी है वो पार्क की तरफ बढ़ गए हैं।
जी जी नितिन,
गांधी की प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण करेंगे।
जी नितिन, आपने कुछ विरोध करने वाले लोगों, जैसा कि नितिन बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बता रहे थे कि स्वागत तो बहुत भव्य हो रहा है, बहुत तैयारियां हैं उनके स्वागत के लिए, और स्वागत के बारे में बताने के लिए ब्रजेश उपाध्याय थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, लेकिन इसके साथ ही वहाँ विरोध के भी सुर काफ़ी गूंज रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध कर रहे हैं, हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की थी, आइए वो आवाज़ आपको सुनाते हैं।
आप क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों आए हैं आप?
हम लोग नेपाल से हैं, नेपाल में इसने बहुत बुरी तरह से हाल बना के रखा है हमारे ऊपर, अनाउंस ब्लॉकेट करके रखा है बहुत सारी बीमारियों का औषध।
क्या प्लान है अभी से लेके यहाँ से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ। जो ब्लॉकेट हुआ है उसके अगेंस्ट आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है मोदी से?
मोदी से जल्दी नेपाल में जो बंद कर दिया है रास्ता उसको खोल दीजिए, जल्दी से जल्दी
फॉलो करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, थैंक यू।
आपने कुछ विरोध करने वाले लोगों की आवाज़ सुनी। एक और गुट है आवाज़ नाम से जिसने अपना संगठन बनाया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे का विरोध कर रहा है, आइए उनकी भी आवाज़ें सुन लेते हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने ही उनसे भी बात की।
हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़े हैं, हमारे साथ तमाम प्रोटेस्टर्स हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी?
क्या मांगते हैं? मोदी ऑफ।
आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए यहाँ पर बारिश में?
मोदी जो कि एक दरिंदा है जिसने कई लोगों की जाने ली है, उसे देश को बदनाम करने का कोई हक नहीं है।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के स्वागत की बात की है, आप लोग
हम खिलाफ
every minority, every Nepal, Sikkim, Bhutan, Gorkhaland, everybody with the against the Modi.
कई ऐसे गुट हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। नितिन, ये बताइए कि ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा का विरोध कर रहे हैं और इस मौसम में भी बाहर निकले हैं?
लेकिन इस वक्त यहाँ पे लगभग 400 लोग हैं, सुबह हम आए थे 200-250 लोग थे, लेकिन अभी 400-450 लोग करीब दिख रहे हैं मुझे। और अगर भारतीय स्टैंडर्ड से देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन यहाँ के बीच सेंट्रल लंदन के स्टैंडर्ड से काफ़ी सारे लोग हैं, और इस बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी हैरानी है जो स्थानीय लोग हैं उनमें कि इस तरह से सेंट्रल लंदन की सड़कों को बीच आमतौर पर बंद नहीं किया जाता, इस तरह से सुरक्षा इंतजाम ऐसे नहीं होते। तमाम दूसरे देशों के प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं, अभी कुछ दिन पहले चीनी हेड ऑफ स्टेट आए थे। लेकिन बहरहाल इन प्रोटेस्टर्स के अलावा जो खास बात है वो ये है कि 10 वर्ष में एक पहला दौरा हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री का, और ब्रिटेन की जो सरकार है डेविड कैमरन की, वो भी इसको देखकर अच्छी खासी एक्साइटेड लगती है, क्योंकि जाहिर है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था और बिजनेस पे जोर रहने की उम्मीद है। आज दोपहर में पार्लियामेंट में जाएंगे मोदी और डेविड कैमरन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर जो तमाम सांसद हैं उनसे मुलाकात होगी, भाषण होगा, उसके बाद तमाम इंगेजमेंट्स हैं। तो ये समझिए कि बहुत अहम एक तरह से मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच आज से कल दोपहर के बीच में होने वाली है।
जी नितिन, नितिन जहां मौजूद हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा शोर है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भी बहुत साफ़ नहीं आ पा रही है। आप सब लोगों को भी ये दिक्कत हो रही होगी, हम उनसे दोबारा कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी होगी कि उनकी आवाज़ अच्छी मिल पाए। और इस बीच हम आपको बता दें कि ब्रिटेन के सिख समुदाय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांगों की एक फहरिस्त रखी है। लंदन का साउथ हॉल इलाका बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी प्रवासियों की रिहाइश है और वहां के गुरुद्वारे के प्रमुख गुरमेल सिंह मलही प्रधानमंत्री के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हो रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने उनसे बात की और ये पूछा कि वो क्या करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से।
जैसे 84 के जितने भी सिखों को कत्लेआम किया गया उनको सजाएं नहीं मिली, जैसे सेट गठन किया गया है उसको प्रॉपरली काम किया है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, लेकिन उसके ऊपर काम करना बाकी है। वो हम चाहते हैं कि जितने लोगों ने वो कत्लेआम किया उनको लोगों को सामने लेके जाया जाए। दूसरी हमारी जो है प्रिजनर जो है, जो सजाएँ ख़त्म हो चुकी है और जो आदमी सम ऑफ देम इन हॉस्पिटल लॉन्ग टाइम मेंटली डिस्टर्ब है गया, और ओल्ड पीपल ओवर 70 है, उन लोगों को रिलीज़ किया जाए। और तीसरा जो है कालियाँ सूचियों का है, और चौथा जो है कुछ लोग जिनके ऊपर केस डाले गए हैं लेकिन वो लोग उस कंट्री में भी प्रेजेंट नहीं, उन लोगों को जब इधर से जाते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं उनको अरेस्ट ना किया जाए, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव हायर करे और अपना केस फाइट करे, बताए कि मैं जेन्युइन पर्सन हूं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। सो ये है। उसके बाद जो इकोनॉमिकली लास्ट 30 ईयर में वर्ल्ड वाइड लोगों ने आके साइलम ली है, तो बहुत से लोग वापस जाना चाहते हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिलता, उनको वीज़ा नहीं मिलता, वो भी एक इशू है।
क्या आपकी मांगे पूरी की जाएंगी आपको लगता है सर?
देखो, जो पिछले आज़ादी के बाद अब तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला, अब तक चलता आ रहा है, एक होप है कि नई पार्टी उभर के सामने आई है। नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड वाइड एक विजन दिया है, कोशिश कर रहे हैं जो बाहर ब्रेकेज जो रेड टेप लगी हुई उसको निकाल के एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, तो हम होप करेंगे, क्योंकि इसीलिए
आपकी सरकार से वार्तालाप चल रही है।
बिल्कुल, हमने कोशिश की है, इंडिया में भी जाके वहाँ भी हमने जो अपना प्रमाण पत्र उनको दिए हैं, ताकि उसके ऊपर खुले तौर पर विचार करके, और जो हालात क्रिएट हुए हैं वो कोई जानबूझ के नहीं हुए हैं, हालात बन गए, जब हालात बन गए तो जो सजाएं हो रही है, जो सजाएं ख़त्म हो चुकी है, तो हम वही बात कर रहे हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए।
भारत में जो कंसर्न है वो ये है कि आपकी जो मांगे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे खालिस्तान मूवमेंट के लोग आ जाते हैं, वो डिमांड करने लगते हैं अपनी तरह से, जो सेपरेटिस्ट डिमांड है।
यूरोप में जितने भी लोग बसते हैं वो कानून में रहते हैं, अगर यहाँ इस कंट्री में कानून में रह के जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यहाँ कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया 25-30 साल से, तो क्या आपको लगता है उस देश में, जिस देश में हम जमे पले, जिस देश में हमने वहाँ की रोटी खाई, और हम उस देश में कोई जाके ऐसी गलत काम करेगा? जो इंसान किसी का क्राइम करता है वो उसका कोई धर्म नहीं होता।
तो क्या खालिस्तान मूवमेंट को आप नकारते हैं?
डेफिनेटली खालिस्तान की आवाज़ आती है, खालिस्तान के जो, क्योंकि 30-31 साल से उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, तो डेफिनेटली अगर चॉइस क्या होती है, एक रूम में एक बिल्ली को बाँट दो, छोटी सी बिल्ली कैट, उसको पकड़ना चाहो तो आपके गले में आती है, अगर विंडो खोल देगे तो वहाँ से भाग जाएगी। उसी तरह अगर हम इंसाफ, ह्यूमन राइट्स बेस के ऊपर इंसाफ मिलेगा, जिन लोगों के परिवारों के बच्चे मर गए उनको इंसाफ मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली सभी को फील करेंगे कि जस्टिस मिला है, इंसाफ मिला है।
आपने सुनी ये आवाज़ थी साउथ हॉल के गुरुद्वारे के प्रमुख गुरमेल सिंह मलही की, जो प्रधानमंत्री के साथ आज रात्रि भोज में शामिल हो रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद उनसे बात कर रहे थे। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ। कल दिवाली थी और इस मौके पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हिंदुओं के कार्यक्रम में शरीक हुए और वहां से उन्होंने जो भाषण दिया है उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। आइए जरा सुने कि उन्होंने कहा क्या है।
मैं आज आपके इस त्यौहार में आपकी खुशियों में शामिल हुआ हूँ। मुझे बड़ा शौक था और मैं गिला किया करता था अपने दोस्तों से, मेरे जो हिंदू दोस्त हैं यहाँ पे जो तशरीफ फरमाए, मैं उनसे गिला किया करता था कि मुझे क्यों नहीं बुलाते आप मुझे दिवाली के फंक्शन में बुलाएं, दिवाली की खुशियों में शरीक होने का मौका दें, आइंदा मुझे ऐसी जगह पर भी बुलाएं जहाँ दिवाली आप मनाते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के रहने वाला कोई भी क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और फिर पारसी कोई भी हो, वो मेरा है, मैं उनका हूँ। हिंदू के खिलाफ अगर कोई जुल्म होता है और अगर करने वाला जालिम मुसलमान है तो मैं मुसलमान के खिलाफ एक्शन लूँगा, मजलूम का साथ दूंगा। मेरा अपना मजहब मुझे ये सिखाता है।
बहुत से लोगों का मानना है कि नवाज शरीफ का ये भाषण उनके मिजाज से बहुत मेल नहीं खाता। लोगों के जहन में 90 के दशक का उनका वो कार्यकाल भी दर्ज है जिसमें वो अमीरुल मोमिन बनने की कोशिश में थे। पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार वसीतुल्लाह खान से मैंने पूछा कि क्या उन्हें इस बयान से कुछ हैरानी हुई है।
नहीं, हैरानी इस लिहाज से तो नहीं हुई कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान फरवरी में मंजूर हुआ था, पार्लियामेंट ने भी फौज को कहा था कि ये जितनी भी मिलिटेंसी की रूट्स वगैरह हैं उनके खिलाफ अब डिसाइसिव स्टेप्स लिए जाएं, तो उसके बाद से जाहिर है कि पाकिस्तान में एक एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा है। और पिछले हफ्ते फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत के हिसाब से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है उसने अब डिसाइड कर लिया है कि उसकी जो मंजिल है वो एक डेमोक्रेटिक और लिबरल पाकिस्तान है। अब से एक साल पहले तक लिबरल का जो लफ्ज है वो यहाँ लोग देखभाल के इस्तेमाल करते थे, इसलिए कि उस पर रिएक्शन बहुत होता था, एक तरह से गाली बन चुका था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहना एक ही हफ्ते पहले कि जी हम लिबरल और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा स्टेप। उसके बाद ये पहला मौका है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी हिंदू बिरादरी या मतलब माइनॉरिटी का कोई वर्ग है उसका जो कोई मेन जो एक सेलिब्रेशन हो सकती है उसमें शिरकत की।
इस स्टेप की वजह मतलब सिर्फ विदेशी निवेश का मसला है या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है कि जो लोग हैं पाकिस्तान में हाशिए पर उनको मुख्य धारा में लाया जाए।
ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इनको दूसरी पारी मिली थी तो ये पूरी तरह इस कोशिश में थे कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो बन जाएं। अब मेरा ख्याल है कि कभी ये भी होता है कि 30-35 साल से पाकिस्तान को जो चिरके लग रहे हैं अंदर से और बाहर से, तो हो सकता है कि स्टेट का जो नरेशन है उसने रियलाइज किया हो कि अब ये टाइम है कि चिरके क्यों लग रहे हैं, इसको असेस किया जाए। और दूसरे ये कि बाकी दुनिया के साथ अगर वाकई तरक्की करनी है, लेकिन ये कि अभी तो जाहिर है कि सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं, आने वाले दिनों में सॉलिड नरेशन जो है उसकी शक्ल क्या होती है, फंडामेंटलिज्म को कितनी रोक लगती है, जो मदरसे हैं उन पे कितना चेक रखा जाता है, मस्जिदों में जो तकरीरें होती हैं या जो जबरदस्ती की शादियों का मसला है या ब्लास्फेमी लॉ के तहत माइनॉरिटीज के साथ जो बहाने बहाने ज्यादतियां होती उन पे कितनी रोक लग, सारी चीजें मिल मिला के बताएंगी कि पाकिस्तान कितना सीरियस है।
कुछ लोग ये कह रहे थे कि जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, कुछ इस तरह का ही बयान नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी दिया गया है, कोई तुलना देखते हैं आप?
नहीं, मैं तुलना इसलिए नहीं देखता कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उसका रेशियो ऑलमोस्ट 15% है, विच इज अ सिग्निफिकेंट वोट बैंक एंड सिग्निफिकेंट नंबर। पाकिस्तान में 96-97% मुसलमान है, सिर्फ 3% जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आप ले लें, तो उस लिहाज से तो जाहिर है कि पॉलिटिकल मजबूरी तो नहीं है हिंदुस्तान में कि अगर कंपैरिजन इसका किया जाए।
पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों ने इस बयान को किस तरह से लिया है?
जैसे हिंदू वर्ग है हिंदुस्तान में, हिंदू जो है वो भी फंडामेंटलिस्ट हैं और लिबरल हैं, सेकुलर हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी मुसलमानों में बहुत सारे गुट हैं। ये बात ठीक है कि पिछले 35 साल में जनरल जिया के जो टाइम से लेके अब तक यहाँ फंडामेंटल प्रतिक्रियाएं और फंडामेंटल जो एटीट्यूड है लोगों का, नैरो माइंडेडनेस में इजाफा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग लिबरल या सेकुलर अंदाज से सोचते हैं और जो समाज को खुलेपन की दिशा में ले जाना चाहते हैं वो तो बहुत खुश हैं। अब आप ये देखें ना, कल की जो तकरीब थी, फंक्शन था, उसमें पाकिस्तान के हिसाब से कुरान की तिलावत भी हुई और गायत्री मंत्र भी गाया गया, और जब स्वागत किया गया मेहमानों को तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, ये भी साथ साथ कहा गया। ये अनहर्ड था, मतलब पाकिस्तान में इस लेवल पे जी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हों और ये इस तरह का कुछ हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर इवन ये सिंबॉलिक भी है तब भी पाकिस्तान के संदर्भ में ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बड़ा स्टेप है।
आपने सुनी पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार विसदुल्ला खान की आवाज सुनी, और अब हम बात करते हैं इराक की। उत्तरी इराक में कुर्द सेनाओं ने सिंजार कस्बे पर फिर से कब्जा करने के लिए आईएस के ठिकानों पर हमला तेज कर दिया है। कुर्द सेनाओं ने इस अभियान को ऑपरेशन फ्री सिंजार नाम दिया है। इस्लामिक स्टेट ने सिंजार पर पिछले अगस्त में कब्जा कर लिया था। कुर्दों के इस अभियान को अमरीकी नेतृत्व के गठबंधन सेनाओं की ओर से हवाई हमलों के जरिए मदद की जा रही है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
रॉकेट लॉन्चर्स की ये आवाज़ें उत्तरी इराक में सीरिया की सीमा से लगी सिंजार पहाड़ियों में गूंज रही हैं, जहां कुर्द सेनाओं ने सिंजार कस्बे को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन फ्री सिंजार छेड़ा हुआ है। बीबीसी के संवाददाता जिम म्यूर कुर्द सेनाओं के एक मोर्चे के पास ही मौजूद हैं, जहाँ से कुर्द फौजें सिंजार कस्बे को दोबारा से हासिल करने के लिए आईएस के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर दाग रही हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के शोर के बीच ही जिम वहां के ताजा हालातों के बारे में बताते हैं।
सिंजार की पहाड़ियों से कुर्द सेनाएं एक के बाद एक रॉकेट नीचे कस्बे की ओर दाग रही हैं। ये सिंजार कस्बे के इर्द गिर्द सिंजार की पहाड़ियां हैं। पिछले साल अगस्त में सिंजार कस्बे पर आईएस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब कस्बे के कुछ हिस्सों को कुर्द सेनाओं ने दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया है। अब कुर्द सेना कस्बे में पूरी तरह कब्जा कर लेना चाहती हैं, और इस अभियान को इन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन फ्री सिंजार। फिर से ये सेनाएं कभी भी रॉकेट दाग सकती हैं। तो ये धमाके बहुत शोर मचा रहे हैं। नीचे घाटी में इनका क्या असर हो रहा होगा, यहाँ से कुछ कह पाना संभव नहीं है। पश्चिम देशों के नेतृत्व वाले गठबंधन की सेनाओं की ओर से भी हवाई हमले किए जा रहे हैं, तो सारी घाटी को पूरी तरह से घेरा हुआ है। कुर्द इस बार पूरे कस्बे में कब्जा कर लेने के लिए बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत सरल नहीं है, क्योंकि आईएस भी हर किस्म के विस्फोटकों के साथ वहाँ मोर्चा बनाए हुए है।
ये थे कुर्द सेना के एक मोर्चे पर मौजूद बीबीसी संवाददाता जिम म्यूर के शब्द। ऑपरेशन फ्री सिंजार के डेप्यूटी कमांडर जनरल ताके मुल्ला इब्राहिम ने कहा है कि कुर्द सेनाएं सिंजार को आजाद कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिंजार को अन्याय से आजाद कराना हमारा फर्ज है, ये हर एक कुर्द नागरिक का फर्ज है, और हमारे नेता मसूद बरजानी ने हमें यही करने को कहा है। हम सिंजार पर हमला करने और उसे जल्द ही आजाद करा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सिंजार के लोग वापस अपने घरों की ओर जा सकें। ये थे ऑपरेशन फ्री सिंजार के डेप्यूटी कमांडर जनरल ताकी मुल्ला इब्राहिम के शब्द। कुर्द सेनाओं ने दावा किया है कि उसने इस इलाके के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है जो कि सीरिया की सीमा से लगे हुए हैं और इस्लामिक स्टेट के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम हैं। अगर कुर्द सेनाएं सिंजार पर दोबारा से कब्जा कर लेती हैं तो रक्का और मौसूल के आईएस के दो मजबूत ठिकानों का संपर्क तोड़ा जा सकता है। सिंजार को दोबारा हासिल करने के लिए तकरीबन 6,000 कुर्द पेशमर्गा लड़ाके मोर्चे पर हैं, जिनके साथ मिलकर 1,500 यजीदी लड़ाकों की सिंजार रेजिस्टेंस यूनिट भी लड़ रही है। इसके अलावा लगभग 300 कुर्दिश पीकेके गुरिल्ला भी इनके साथ हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। और वापस एक बार फिर चलते हैं लंदन। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय हमारे साथ संपर्क में आ चुके हैं। ब्रजेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब से थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री का वहां इस्तकबाल किया गया, पूरे सैनिक साजो सामान के साथ उनका स्वागत हुआ, तो किस तरह का नज़ारा वहां पर था, किस तरह की, जरा कुछ शब्दों में हमें बताइए सबसे पहले।
जी देखें, काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि इसको जिसे हम स्टेट विजिट कहते हैं वो उसका दर्जा नहीं है इस विजिट को, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते हैं भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरह का दिया गया, तो वो ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी राजकीय स्टेट विजिट में दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री डाउनिंग स्ट्रीट जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का सरकारी निवास स्थान है वहां गए हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए वो जो ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ उनकी बातचीत चल रही है। अंदाजा है कि अब से जो हमें पहले वक्त बताया गया था उस हिसाब से अब से करीब 15-20 मिनट के बाद दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आएंगे और दोनों ही पक्षों से एक एक सवाल जवाब करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहीं से कुछ दूरी पर जो गांधी जी की जो नई मूर्ति का अनावरण हुआ था इस साल मार्च में, वहां जाएंगे और फिर जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त वो ब्रिटेन की संसद है, उसके ठीक बाहर अभी सिक्योरिटी की तैयारियां बढ़ गई हैं अचानक से, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री आ जाएंगे और पहले प्रधानमंत्री होंगे वो जो एक साझा सत्र को संबोधित करेंगे। और जो मुझे बताया गया वहां पर कि लॉर्ड स्पीकर और लॉर्ड स्पीकर दोनों होंगे, यानी कि दोनों ही सदनों के जो अध्यक्ष होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे। जी
ब्रजेश, आपने बताया कि वो संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो किस तरह का उत्साह सांसदों ने जताया है उनकी इस भाषण को सुनने के लिए? क्योंकि हमने तो ये भी सुना कि कुछ लोगों ने कुछ प्रस्ताव ऐसे पारित करने की कोशिश भी की है जो कि भारत के खिलाफ हैं या प्रधानमंत्री के विरोध में हैं।
जी बिल्कुल, पहले तो आपने जोश की बात की तो काफी जोश है जिन लोगों में, और खास करके आपको जैसा कि मालूम है कि कम से कम 10 सांसद हैं जो भारतीय मूल के हैं। और अब से कुछ ही मिनट पहले मेरी बात हुई भारतीय मूल के जो सांसद हैं, कीथ वाज, जो मूलतः गोवा निवासी हैं, और उनसे मैंने पूछा कि आप क्या सुनना चाहेंगे वहां उनसे, प्रधानमंत्री मोदी से। तो उनका ये कहना था कि हमें ये सुनकर बहुत खुशी होगी अगर वो ये कह पाए कि ब्रिटेन आज के दिन में भारत का सबसे करीबी दोस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे हैं और ये भी है कि प्रधानमंत्री ने 27 देशों का दौरा करने के बाद ब्रिटेन आने का फैसला किया, लेकिन हो सकता है कि सबसे बेहतर जो दौरा है वो उन्होंने आखिर के लिए बचा रखा हो। तो एक तरह का वो उत्साह था। जब आपने जो दूसरी बात की तो जी ये बिल्कुल सही है कि कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री कैमरन से कहा है कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उसमें कश्मीर का मामला उठाएं, गुजरात का मामला उठाएं और भारत में से जिस तरह के जो इंटॉलरेंस की जो खबरें आ रही हैं वो मामला उठाएं। लेकिन वो देखने वाली गौर करने वाली बात होगी कि वो बातें किस हद तक सामने आती हैं।
ब्रजेश, ये भी कहा जा रहा था कि मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही थी कि बिहार में जो चुनावी हार हुई है उसका असर इस दौरे पर, मतलब इसकी छाया उस पर पड़ेगी, क्या कुछ दिख रहा है वहां पर?
मैं आपको नहीं सुन पाया, अगर आप अपने सवाल दोहरा सकें।
जी ब्रजेश, ये कहा जा रहा था कि बिहार के इलेक्शंस में जो हार हुई है बीजेपी की उसका साया प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे पर रहेगा, तो क्या कुछ वहां ऐसा दिखा है अब तक?
नहीं, ऐसा फिलहाल ये नहीं देखा और वो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वो कल वेम्बली में हजारों लोगों को संबोधित करेंगे तो वहाँ किस तरह का जोश दिखता है, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ी हार हुई है बीजेपी के लिए वहाँ। और प्रधानमंत्री इस दौरे से जो अपना जो एक तरह की राजनीतिक पूंजी है उसमें फिर से एक तरह का आप कह सकते हैं कि इजाफा उसको फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे।
जी ब्रजेश उपाध्याय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास अपने दूसरे कार्यक्रम में भी आएंगे। लंदन से ब्रजेश उपाध्याय। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चार दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर लंदन पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के बीच मुलाकात जारी है। इस दौरे में ब्रिटेन और भारत के बीच अरबों पाउंड के व्यापारिक समझौते होने की उम्मीद है। इस बीच भारत में कथित असहनशीलता के विरोध में मानवाधिकार संगठन लंदन में मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुर्द लड़ाकों ने उत्तरी इराक के सिंजर शहर में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में भारी सफलता मिलने का दावा किया है। यूरोप के कई देशों में पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क पर छापे मारे हैं जो लड़ाकों को इराक और सीरिया भेजा करता था। छापे में 16 इराक कुर्द और एक कोसोवो के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ने बुरुंडी की सरकार और विपक्ष से महीनों से चल रही हिंसा खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में हो रही वार्ता में हिस्सा लेने की अपील की है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आम हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। समय की कमी के कारण आज हम आपको चिट्ठियों का जो आपकी कार्यक्रम होता है वो अगले प्रोग्राम में सुनाएंगे। और अब निखिल रंजन को दीजिए स्टूडियो मैनेजर दीपक जसरोटिया के साथ अनुमति। नमस्कार।